نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة بقرة آیت نمبر 21 سے 29 تفسیر دیکھیں گے، اور ان آیات کو پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اب سے پیچھے کی آیات کو ساتھ جوڑیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں پورا قرآن پاک اس طرح سمجھ آنے لگے کہ جس طرح کے ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں. قرآن پاک کے آغاز میں ہم سب نے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی تھی، پھر اس کے بعد اپنی بندگی کا اقرار کیا تھا، پھر اس کے پاس ہدایت کی دعا مانگی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا جواب سورۃ بقرہ کے شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر کیا گیا. پھر ہم نے تین گروہوں کا تذکرہ ابھی تک پڑھا کہ جو ہدایت کی طلب میں نکلے تھے. اگر آپ مائنڈ میپس اپنے ذہن میں بنائیں تو بات بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے. ہدایت کو آپ کوئی گولڈ کوائن بنا لیں اور تین لوگ اس کو پانے کے لیے بھاگتے ہیں. طلب سب کو ہے، سب کی ضرورت بھی ہے، لیکن وہاں تک پہنچا صرف ایک ہی گروہ. دوسرے گروہ نے تو شروع سے انکار کر دیا، گیو اپ کیا، کہاں بگننگ میں کافر کہلایا، کہنے لگا یہ ملنی ہے کوئی نہیں، ممکن نہیں، چھوڑو، ہم کا اپنی دنیا کی زندگی کیوں برباد کریں. تو پہلا وہ گروہ جس نے ہدایت کے میجک سٹون کو یا ہدایت کے ڈائمنڈ کو پانے سے ہی انکار کر دیا شروع سے ہی، وہ تو کافر بنا. ایک دوسرا گروہ جو تھا وہ بھی نکلا، لیکن راستے میں جو رکاوٹیں آئیں اور جو مشکلات آئیں ان کو سہ نہ سکا. پوری خواہش اور تمناؤں کے باوجود بھی وہ ہدایت کی قیمت نہ دے سکا، لہٰذا دنیا کے فائدے چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا، دین کے فائدے اس طرح ہاتھ میں آ نہیں رہے تھے. تو اس کی ساری زندگی کی کیفیت جو تھی وہ گو مگو کی رہی، اور اس کے بعد وہ پھر جس ہاتھ آیا تھا وہاں چلا گیا. کبھی لگتا تھا کہ یہ جیت جائے گا، اس کو ہدایت مل جائے گی، لیکن پھر اس کے نفس کا کوئی تقاضا سامنے آتا تھا تو وہ سب باتوں کو پیچھے ڈال کر اپنے نفس کی ماننے لگتا تھا. اسی طرح سے کبھی کبھی جب ہدایت کا راستہ صاف شفاف خوبصورت ہوتا تھا تو وہ دوبارہ آگے آ جاتا تھا، لیکن اس کے بعد آخر انجام کیا ہوا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب. یعنی دنیا بھی اس کی گئی اور آخرت بھی گئی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تین گروہوں کا تذکرہ کیا. یہاں سے اب جو آیتیں ہیں ذرا ان کا تھوڑا سا خلاصہ لیجئے، یہ بہت ہی اہم آیات ہیں. یعنی اس میں آپ کو بہت ساری یونیک چیزیں ملیں گی جو ابھی تک کے قرآن پاک میں ہمیں نہیں ملی. تو پہلی چیز، آئیے آیت دیکھیے 21 سے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچ جاؤ. یہاں سے آیتوں کا ایک بڑا خوبصورت مجموعہ شروع ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں آپ کو ایک دم انداز بدلا ہوا دکھے گا. اگر آپ کا فہم ساتھ ہے اور آپ پچھلی آیات کا کم از کم ترجمہ ذہن میں رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے پیچھے غائب کے سیگوں میں بات ہی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے. اس سے پیچھے کہتا يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. آپ اگر گرامر میں نہ بھی الجھے نا تو صرف اردو کے جملوں کو سن کے بھی سمجھ جائیں گے. مثلا سورۃ بقرہ کے شروع میں ہم نے کیا پڑھا، يُؤْمِنُونَ. اب يُؤْمِنُونَ کا ترجمہ کیا ہم کرتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، تو وہ کون ہوتے ہیں، کوئی تھرڈ پرسن ہے نا. پھر اس کے بعد دیکھیے، ہم نے اس کے بعد آگے پھر پڑھا، ہم کی ضمیر بہت آئی، یعلمون، یکذبون، یعنی کسی تھرڈ پرسن کی بات تھی. یہاں آپ کو تم کی ضمیر ملے گی، یعنی غائب کے سیگوں سے حاضر پہ لکھیے، سب لکھیں، جو بات سمجھ نہیں بھی آتی اس کو بھی لکھیں. پچھلی باتیں غیروں کی تھی، اب آپ کی میری بات ہے. چلے یہ جملہ تو سمجھ آ گیا نا، کم تم، کم تم. آپ کو اس پورے رکوع میں تم کے سیگے ملیں گے، تمہاری بات، تم تم. شروع میں غائب کی باتیں تھی، تھرڈ پرسن تھا، جیسے کوئی کہانی سنائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تین گروہوں سے مانوس کروا دیا. اب جب ہم نے تینوں کا تذکرہ پڑھ لیا تو فکر یہ لگ گئی کہ میں کہاں کھڑی ہوں، تو کہا ہو تم دیکھو تم کدھر ہو. دوسری بات یہاں آپ کو دکھے گی کہ یہ ایک رکوع جو ہے ये पूरे मक्की कुरान का खुलासा है, यानी सूरत बकरा मदनी दौर के आगाज में नाजिल जब हुई, उससे पहले तकरीबन 2/3 यानी 2/3 कुरान नाजिल हो चुका था। इस एक रुकू में उस पूरे का खुलासा है। तीसरी बात इस आयतों की बड़ी अहम है, वो क्या है? इस्लाम के तीन बुनियादी मजमून है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, 3 फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम। ये वही है जिनको असूले सलासा भी कहते हैं, और ये वही है जिनका कब्र में सवाल जवाब होगा। उन तीनों का जवाब आपको इस एक रुकू में मिलेगा, यानी अकीदे की सब बातें इस एक में आ जाएंगी। फिर अगली बात नोट कीजिएगा कि सूरत बकरा के शुरू में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था, जालिकल किताबु ला रईबा फी। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। किस बात में शक नहीं? कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि खुदा लिल मुत्तकीन। याद कीजिए पिछली बातें कि हिदायत है तकवा वालों के लिए, यानी पहले ही दिन ये बात बता दी कि हर पढ़ने वाले को हिदायत नहीं मिलती। ये ऐसी है जैसे बाजार जाने वाला हर शख्स कुछ खरीद के नहीं लाता। आप लिखेंगे ना तो आपका जज्ब बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। आप देखिए कि बहुत सारे लोग बाजार से गुजरते हैं रोज, क्या हर एक खरीद के लाता है? आप अपने ऊपर ले, मुझे नहीं पता आपकी आदत का, लेकिन जिसको जो चीज खरीदनी होती है ना वही खरीदता है। वो बहुत लाओबाली है अगर आप लेने कुछ ना जाएं और देखने ही जाएं और ले आए। बहुत नासमझ होते हैं, वो कहते हैं ऐसी घूमने गई थी, किसी के साथ गई थी, फिर मैं भी ले आई। क्या ले आई? जो सेल पे था वो भी ले आई, जो पसंद आ गया, जरूरत नहीं थी, वट एवर। हालांकि इसके बरक्स जो समझदार लोग होते हैं ना, वो पहले से सोच के जाते हैं कि हमने लेना है कि नहीं लेना, हम किसी की हेल्प के लिए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हिदायत को एक कमोडिटी समझिए, एक शॉपिंग लिस्ट के अंदर डाली हुई चीज सोचिए। जो घर से सोच के निकलते हैं ना कि आज तो हिदायत लेके आनी है, तो उसके लिए फरमाया ला रही बाफी, अल्लाह ताला ने ये बात बता दी। लेकिन शर्त क्या है? कि हुदा लिल मुत्तकीन। लिखिए तकवा वो पहली मंजिल है जिसको पाकर बंदा हिदायत पाता है। यानी दोबारा बोल देती हूँ, जो जुमला आपको आसान लगे वो लिख लीजिए, कुरान से फायदा उठाने की बुनियादी शर्त तकवा है। और जिस इंसान को ये तकवा मिल जाता है ना, वो हिदायत से फायदा जरूर उठाएगा। सब कहते हैं दिन सिरात अल मुस्तकीम, लेकिन उलाई कला खुदम में रब्बी हिम व उलाई कहुमुल मुफलेहून। कौन होंगे? जो संजीदा होंगे, जो मुत्तकी होंगे। यही वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में आगे बढ़ाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस वक्त जो मैसेज है वो क्या है कि या अय्युहन्नास, ए लोगो। यहाँ एक और खूबसूरत बात नोट कीजिए, पहला खिताब है इंसानियत का, इंसानियत को रब का पहला खिताब। बल्कि जैसे मैं आपको हर लेसन का एक टॉपिक लिखाती हूँ ना, तो इस हिस्से का टॉपिक लिख लीजिए इंसानियत के नाम रब का पैगाम। और बुनियादी थीम जो इस एक रुकू में से मुझे आपको मिलेगा ना, अल्लाह की गुलामी इख्तियार करनी है। और इस एक सबक से हमें ये भी पता चल गया कि कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए। मजे की बात देखिएगा, या अय्युहन नास कह के अल्लाह ने बीच में से फरिश्ते को भी निकाल दिया, रसूलों को भी निकाल दिया। आप इस पुकार को जरा अपने दिल पर तो महसूस करके देखें, ऐ लोगों। जैसे मैं यहां बैठे बैठे एकदम बोलूं, ओ फरा बात सुनिए, तो मैंने तो नहीं कहा कि किसी को, और दूसरी सूरत है मैं आपसे कहूं सईदा जाइए ताहिरा को कहकर आइए, फर्क है ना, टोन बदल जाती है। मजे की बात एक और नोट कीजिए कि अभी तक तरतीब से पढ़ने के दौरान हमने या अय्युहल्लज़ीना आमनू भी नहीं पढ़ा। खुशफहमी दूर हो गई मेरी तो, क्या कि मैं समझी ये मुसलमानों की किताब है। अल्लाह ने अपने रब होने का सबूत दे दिया कि ये सारी इंसानियत की किताब है। कुरान हकीकत में नौ इंसानी के लिए, ना अरबों के लिए, ना अजमियों के लिए, ना बनी इस्माइलियों के लिए, ना बनी इसराइलियों के लिए। जहां जहां अल्लाह का कोई बंदा बसता है, कुरान उन सब के लिए हिदायत और रहनुमा है। कुरान पाक में इसको जिक्रुल लिल आलमीन भी कहा गया, तमाम दुनिया के लिए नसीहत। इसी तरह नबी सल्लम ने खुद अपने बारे में फरमाया कि मुझे अल्लाह ने अस्वद और अहमर का रसूल, यानी काले और सुर्ख का, यानी गोरे लोग हों या काले हों, उनकी तरफ भेजा। फिर आपका एक खिताब रहमतुल लिल आलमीन भी था, आप रहमत थे सारे जहान वालों के लिए। आपने हजरत ईसा अलैहि सलाम की तरह ये नहीं कहा कि मैं बनी इसराइल की भेड़ों को इकट्ठा करने आया हूँ, बल्कि आपने क्या कहा कि मैं कौन हूँ, रहमतुल लिल आलमीन हूँ। फिर आप कुरान पाक में पढ़ेंगे कि पिछले अंबिया ने भी क्या कहा था, या कौमी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार भी ऐसे नहीं कहा होगा कि या कौमी, बल्कि आप क्या कहते थे, या अय्युहन्नास। इसी की दलील है, नोट कीजिए ये छोटे छोटे नुक्ते, जुमले एक जुमला लिख के ना दूसरा जुमला अगली लाइन में शुरू किया करें, आप देखिएगा आपके नोट्स बहुत इजी हो जाएंगे बाद में आपको पढ़ने भी और याद रखने भी। हर जुमले को बस एक लाइन पर लिखें, सफ़ों को बचाए नहीं, पैराग्राफ शक्ल में जब हम लिखते हैं ना तो बाद में फिर सब मिक्सअप हो जाता है। या यून नास से हम बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला का पैगाम सारे बंदों के लिए, तो नोट कीजिएगा कि इसी एक हुक्म की वजह से नबी सल्लम ने सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया के बाद पूरी उस दौर की ममलिकतों के जो बादशाह थे उनको खत लिखा। क्यों? क्योंकि या यूहन्नास, नबी सल्लम की जैसे ये जिम्मेदारी थी ना कि अपने सामने के लोगों को दीन सिखाएं, यानी मक्का में रहते हुए मक्का वालों को, मदीना में रहने वालों को मदीना वालों को, जैसे मेरे आपके ऊपर क्या फर्ज है। अगर आप और मैं इस जिम्मेदारी को महसूस करें ना तो यकीन करें कि ना हमें नींद आए, ना हम परेशान हों, ना कुछ और हों, बस हमें एक काम लग जाए कि अल्लाह मरने से पहले ये जिम्मेदारी अदा करवाना। और जो नबी सल्लम ने भी जाते हुए दुनिया से दी थी कि हर हाजिर गायब को पहुंचा दे। कुल्लुकुम राइन, तुम्हें सारे एक शेफर्ड है, चरवा है। तो मेरे आपके ऊपर हमारे इर्द गिर्द की जिम्मेदारी है, यानी इस वक्त मैं और आप नॉर्वे में है, वल्लाही मैं बात जो कह रही हूँ मेरा अपना दिल कांप रहा है अंदर से। ये एहसास बंदे को जीने नहीं देता कि मेरी वजह से इर्द गिर्द में कोई चेंज आई कि ना आई, मेरे पास कोई नेमत थी या मैं कुछ कर सकती थी तो मैंने अल्लाह के दीन के लिए किया कि नहीं किया। आपसे मुझसे यकीनन अल्लाह ओस्लो शहर के बारे में पूछेगा जहां जहां हमारी रेंज है, लेकिन अफ्रीका में इस्लाम आया कि नहीं आया अल्लाह तेरा शुक्र है वो तुमसे नहीं पूछेगा, और चाइना में कुछ हुआ कि नहीं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिम्मेदारी थी कि हर एक को बुलाएं। आप पूरी नौ इंसानी के लिए हादी थे और कुरान एक हिदायत नामा बनकर आया। और फिर एक जुमला लिखिए बहुत अहम है, या यूहन्नास का खिताब एक बहुत बड़ी हकीकत को खोल रहा है कि नबी सल्लम खातिमुन नबीजीन थे। लिखिए इस जुमले को, आपके आखिरी नबी होने की दलील है ये आयत। क्यों? क्योंकि आपके बाद कोई आना जो नहीं तो फिर आप ही सबको देंगे ना। देखिए आपको पता है ना दो लोग हैं आपकी जगह और कोई आ जाएगा, यकीन करें कि आपकी हिम्मत पहले ही टूट जाती है, छोड़ो कोई और कर लेगा। और जिसको पता होता है ना ये काम मैंने ना किया तो किसी ने नहीं करना, तो आप देखते हैं कि माएँ सर पर दुपट्टा बांध के भी बच्चों के लिए खाना बना रही होती हैं कि ना खिलाया ना पकाया तो कौन देगा। बस अपने कंधों पर इस जिम्मेदारी को हम महसूस कर लें, वल्लाही ये है असल दीनदारी मेरी नज़र में। मुझे तो दीन यही समझ आया है, नमाजें रोज़े हमारी इसी की तैयारी के लिए हैं, यही स्पिरिट पैदा हो जाए फजर से लेकर ईशा तक 5 दफ़ा अल्लाह को बता दो कि जी अल्लाह ताला मैं इस जिम्मेदारी पे मौजूद हूँ। तो लिहाजा ये आपकी खत्मे नबूवत की दलील भी बन गई, क्योंकि आपके बाद कोई और नबी नहीं, लिहाजा पूरी इंसानियत पूरे दुनिया को एक प्लेटफॉर्म बना दिया। और आज के दौर में क्या करें, देखिए मुख्तलिफ मुल्कों में रहना इंतजामी मजबूरी है, कोई बुरी बात नहीं, किसी के पास ब्लू पासपोर्ट है तो किसी के पास ग्रीन है तो किसी के पास रेड होगा, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन दुनिया के लोगों के दिल और दिमाग मुख्तलिफ सोचों पे नहीं रह सकते। ये नहीं लिखा हुआ कि हिंदू क्यामत तक हिंदू रहेंगे, यहूदी और ईसाई क्यामत तक के लिए यहूदी और ईसाई रहेंगे, नहीं। हर एक को अल्लाह का मजहब अल इस्लाम, अल्लाह ताला का नाम है सलाम, उसी की तरफ जोड़ना पड़ेगा। और पूरी कायनात की वहदत की दलील है इस्लाम, या अय्युहन्ना सोबुदु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सारी समझ के अब एकदम आपके दिल में खौफ आने लगा, ये तो एक नई दावत थी उस माशरे में, तो फिर इस दावत को फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे लेते और क्या होगा। तो थोड़ा सा चंद जुमले बोल देती हूँ जहां ये आयतें उतर रही थी और जहां अल्लाह ने अपने प्यारे आखिरी नबी को भेजा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में भेजे गए पिछले तमाम मजाहब अपनी हकीकत खो चुके थे। आज भी कोई दुनिया का मजहब पूरी तरह से कायम नहीं है, जुज़वी हकीकतें मौजूद हैं, बड़े हिस्से खो चुके। पहली शरीयतें ख़यानतों की नज़र हो गईं, रस्म व रिवाज और खुद साख्ता चीज़ों को लोगों ने शरीयत का नाम दे दिया। और बाज़ दफ़ा, ये जुमला तो लिख लें, जैम बना दें, हालात के दबाव और ईमान की कमज़ोरी के बायस दीन और शरीयत का हुलिया बिगड़ता गया। मेरा ये जुमला किस किस को समझ आया है? आज के दौर में क्या मसले हैं दो? पीयर प्रेशर या हालात का दबाव है? हम वो करने पे मजबूर कर दिए जाते हैं जो लोग कर रहे होते हैं। बस क्या करें, फिर लोगों को भी तो खुश रखना है, दीन पिघल गया। और दूसरी बात कि आज के दौर में दीन मेड इजी का वर्जन, के दीन को आसान करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अल्लाह ताला ने उम्मतों की गुमगुश्ता कोई भी मीरास वापस दिलवाई। दो बातें लिखिएगा, या युहन्ना सोबुदु रब्बकुम को समझते हुए नबी सल्लम की दावत के बारे में। पहली बात है कि अल्लाह के नबी कोई नई दावत लेकर नहीं आए थे, वरना तो वाकई बहुत बड़ा मसला हो जाता, बिग चेंज होता। ये वही दावत थी जो पिछले अंबिया कराम ने भी दी, और आप पिछले अंबिया की दावत का हवाला भी देते थे, उन्हीं अल्फाज को भी दोहराते थे। नबी सल्लम की दावत या कुरान की दावत कोई नई होती तो फिर तो वाकई बहुत बड़ी मुश्किल थी, लोगों को मुश्किल पड़ती। नहीं, एक ही थी, बस भूला हुआ सबक याद दिलाया जा रहा है। और दूसरी बात ये है जो बहुत अलग वाली है, जिस पे मैं अगला लफ्ज़ पढ़ लूँ कि या युहन्ना सोबुदु रब्बकुमुल्लज़ी, ए लोगो इबादत करो अपने उस रब की जिसने तुमको पैदा किया। वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, आयत पे बाद में चलती हूँ, इसमें नुक्ता लिख लीजिए। आपकी दावत का दूसरा बुनियादी नुक्ता क्या था? हर इंसान की बुनियादी जरूरत। देखिए, बेसिक राइट्स का नाम सब लेते हैं ना, उर्दू में हम कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, यही सोचते हैं ना। सर्वाइवल गाइड क्या है आज? रोटी दे दो, खाने को, पहनने को कपड़ा दे दो, रहने को घर। जिस तरह ये हमारी जिस्मानी जरूरियात है ना, इसी तरह स्पिरिचुअल नीड है एक बंदे की। और वो क्या कि इंसान चाहता है कि कोई उसकी रहनुमाई करे, इनफरादी और इज्तमाई मामलात में कोई बंदा उसको बताए मैं कैसे जीऊं, मैं क्या खाऊं, मेरा किसी से रिश्ता है तो उसकी क्या हद है, मेरे हकूक कहाँ से शुरू होते हैं और मेरे फराइज कहाँ पे पूरे होते हैं। जवान होने के साथ साथ हर बंदे के अंदर ये अर्ज आती है, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आपने यहाँ से एयरपोर्ट जाना हो तो आपको लाजमी एयरपोर्ट तक का रास्ता मालूम करना है। अब चॉइस क्या है? आप अपने पास बैठे हुए किसी दूसरे से पूछ लें, क्योंकि आपका गुमान है कि वो आपसे पहले का इधर रहता है, उसको पता होगा। आपके पास चॉइस है कि आप नेट पे जाएं, गूगल में लिखिए गार्डेमोन एयरपोर्ट और आप उसका एड्रेस ले लीजिए अपनी जगह से। थर्ड चॉइस है आपके पास कि आप अपने टेलीफोन में जो गूगल मैप है उसमें डाल लीजिए। चौथी ये कि आपके पास कोई नेविगेटर है, कोई यूपीएस, उस पर डाल दीजिए। मुमकिन है ना? ये तो सब मानते हैं ना कि वी वॉन्ट टू बी गाइडेड, दुनियावी मामलात में भी। मैं कहाँ से ग्रोसरी लाऊं? अच्छा, मैं शहर में आई, अच्छा डॉक्टर किधर है, ट्रेन स्टेशन किधर है? यानी ये मेरी जरूरत है, जब मैं किसी जगह पे आऊंगी तो मुझे कुछ ना कुछ चीजें चाहिए। इसी तरह हर बंदे की एक ख्वाहिश होती है कि मुझे कोई गाइड करे। अब दो तीन एहतमाल हैं, एहतमाल समझते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। पहली ये है कि आप अपने जैसे लोगों से पूछ लें, पता चला आपको पहले तो कुछ ठीक पता था, दूसरे ने गलत बताया और आप गलत चल पड़े। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? ठीक रास्ते पे जाते जाते किसी ने मिस गाइड कर दिया, आपने उसके कहने पे रास्ता बदल लिया, बाद में पता चला नहीं आप ठीक थे, खतरा है ना इसमें। फिर इसी तरह से आप कहते हैं कि ये 10 साल से शहर में रहता है, इसको पता ही होगा, आपने कयास किया, लेकिन आपका टेलीफोन बता रहा है कि दूसरा रास्ता है जाने का, जो रहने वाला है वो दूसरा बताता है। यानी कहने की बात है कि हर जगह कहीं ना कहीं खतरा है। किबला पूछते हैं आप किसी से, किबला किधर है, 10 लोग आपको डिफरेंट किबले बता सकते हैं। फिर आप कहते हैं चले मैं जरा अपने फोन में से निकाल के देख लेती हूँ गैजेट, उसमें क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से एक बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि उसको कोई चलाए। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप देखिए कोई इदारा होता है ना, तो उसका कोई ना कोई एक सरबराह जरूर होगा। उस इदारे की पॉलिसीज़ तय करने का इख्तियार किसी को होगा, लोग उसमें काम करेंगे, उसकी गाइडलाइन में चलेंगे, काम नहीं अच्छा करेंगे तो उसके आगे जवाबदेह होंगे। इसी तरह घर इंसान का पहला इदारा है। घर में शौहर या बीवी दोनों में से कौन सरबराह है, कौन किस बात का जिम्मेदार है, जब तक ये डिसाइड नहीं किया जाता बच्चे लॉस्ट होते हैं। तो इस दुनिया में आने वाले हर इंसान का ये हक बनता है कि सो बुदू रब्बा को, अपने रब की इबादत करो, तुम्हें हर सवाल का जवाब अल्लाह से मिलेगा। इसीलिए आप देखिए कि अगर लोग कहते हैं चले मक्कल को गाइड बना लेते हैं, तो अकल के ऊपर तो बहुत सारे पर्दे होते हैं, कभी ख्वाहिशें होती हैं, कभी उमंगें होती हैं, कभी तमन्नाएं होती हैं। अकल बहुत होशियार है, सिर्फ एक हस्ती है जो जमाने की कैद से मुबर्रा। कोई ओल्ड पर्सन आपको गाइड करे, हो सकता है वो पुराने तजुर्बे की बातें कर रहा है, आज हालात बदल गए। कोई बिल्कुल जवान बंदा आपको गाइड करता है, वो आज के तकाजों की बात करता है, उसके पास तजुर्बे की धूल नहीं है। असल में एक हस्ती है जो एक इंसान को जिंदगी के हर दौर में गाइड कर सकती है, और वो कौन है? रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। आप अपने ऊपर लीजिए, जब आप बच्चे थे तो आप किसकी बात ज्यादा मानते थे? अपने दोस्तों की। स्कूल जाने लगे, टीचर की बात मानने लगे। थोड़ा ज्यादा बड़े हुए, कॉलेज में गए तो कॉलेज के प्रिंसिपल की बात मानी, फिर माँ बाप सामने आए, फिर उस तरह बात होते होते शादी। आप देखिए आज तक, आप अपनी उम्र को देखें, चलिए आप एक एवरेज कर लें 30 ईयर्स में, आप आज तक की इस उम्र में आपने अपने कितने गाइड बदले? मैं तो कहती हूँ आपने जितने अपने दोस्त बदले हैं ना, वो आपके सब गाइड ही थे। कोई चले गए, कोई मर गए, किसी को हमने छोड़ दिया, किसी शहर से हम आ गए। एक हस्ती है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, और वो है रब। उसकी इबादत करनी है। बात समझ आ गई आपको? आप इस नीड को फील कर रहे हैं? कभी आपने लोगों के अंदर वो एम्प्टीनेस देखी है जो इबादत ना करने की वजह से पैदा होती है? इसी को डिप्रेशन कहते हैं, इसी को स्ट्रेस कहते हैं, इसी को खुदकुशी कहते हैं। सीधी सी बात है, मान ही नहीं सकते ये बात कि कोई रब का बंदा बने बगैर खुश रहे। वो कहते हैं ना, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, दिलाता है हजार सजदों से आदमी को निजात। तो लिहाजा एक रब की इबादत की बात की गई। अब दूसरी बात खूबसूरत थी, इस आयत में नोट कीजिएगा कि आपको मुझे कुरान पढ़ते हुए कितने को दिन हो गए। दूसरी दफा हमारे सामने लफ्ज इबादत आ गया। पहले कहाँ आया था? सूरत अल-फातिहा, इय्याका नाबुदु। साथ साथ सोचा करें, जब मैं कहती ना क्या है तो फौरन अलर्ट हो जाया करें, किधर है? है अब सूरत बकरा में आ गया, या युहन्ना सो बुदु रब्बकुम। क्या पता चला कि ये कोई कीमती चीज ही है, कोई अहम बात ही है जिसका जिक्र इतनी 23 आयतें ये हैं और 7 आयतें पीछे की हैं। 30 आयतों में 2 दफा इबादत की बात आ गई, हालांकि बाकियों की नहीं आई। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखिए कि सवाल पैदा होता है कि इंसानियत को इबादत की दावत देकर अल्लाह ताला पैगाम क्या देते हैं। अब ये सवाल लिखिए, यहां रब की इबादत से क्या मुराद है? तो फखरुद्दीन इमाम राजी हैं, बहुत बड़े आलिम गुजरे, कहते हैं जैसे एक मोमिन को ईमान लाने की दावत दी जाती है, आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत निसा की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह। कहते हैं जिस तरह एक मोमिन को ईमान लाने की दावत दी जाती है ना, इस तरह यहां इंसानियत को इबादत की दावत दी जाती है। ठीक है, चलिए इसको भी थोड़ा सा मजीद आगे लेके चलते हैं। तो इबादत क्या है? जुज़वी नहीं, पार्शल नहीं। मैं इसको आपको कहा था आगे भी जाके बहुत बताऊंगी इंशाल्लाह, थोड़ी थोड़ी चीजें बताती जाऊंगी, यहां थोड़ा सा समझ लीजिए। इबादत का असल मानी क्या है? गुलामी और इताअत। हर गुलाम मती भी होता है, जब ये गुलामी एक ऐसी जात की हो जो खालिक भी हो, मालिक भी हो और माबूद भी हो, तो फिर इस गुलामी का हक परस्तिश की सूरत में अदा होगा। अब ये जुमला बड़ा कीमती था, अगर आप नहीं लिख सके मैं दोबारा बोल देती हूँ। जब ये गुलामी ऐसी जात की हो जो खालिक भी हो, मालिक भी हो और माबूद भी हो, पीछे भी तो पढ़ चुके हैं ना, रब की 6 चीजें याद है, वही सब जहन में ले आइए। मतलब हमारा आका या हमारा मालिक इतना बड़ा है तो गुलामी का हक परस्तिश की सूरत में होता है। तो गोया के एतात, गुलामी, परस्तिश। फिर इस तरह याद रखिए कि जब कोई शख्स अल्लाह की गुलामी का दावा तो करे लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, तो आप क्या कहेंगे? वो गुलाम तो है, परस्तिश नहीं कर रहा, वर्शिप नहीं कर रहा। अच्छा, कोई नमाज पढ़ने लग जाए तो इतात ना करे तो हम कहेंगे वो परस्तिश तो करता है लेकिन इतात नहीं करता, पार्शल नहीं है। एक जुमला बड़ा बड़ा करके अपने लिए लिख ले, जेम लिख दें इस सबक का। गुलाम अपने आका का जुज्वी गुलाम कभी नहीं हुआ। वो अपने आका से ये नहीं कहता कि मैं आपका गुलाम जरूर हूं लेकिन मैं आपकी इताअत नहीं करूंगा, या ये भी नहीं कहता कि मैं आपकी फलां बात तो मानूंगा फलां नहीं मानूंगा। अगर कोई ऐसा कहे तो जरा सोचिए आका का हाल क्या होगा, सजा देगा या फिर उसको किसी और आका के हवाले कर देगा? बिल्कुल इसी तरह हम अल्लाह के गुलाम हैं, हमारी गुलामी वक्ती नहीं हर वक्त की है। हम अपने अल्लाह ताला से ये नहीं कह सकते कि हम मस्जिद में तो आपके गुलाम हैं सो नमाज पढ़ेंगे, लेकिन मस्जिद से बाहर निकलकर हम किसी और के गुलाम हैं या कम से कम आपके तो नहीं है, हम आपकी इताअत नहीं करेंगे। हम कारोबार करेंगे तो अपनी मर्जी से, मुलाजमत करेंगे तो अपने तरीके से, हुकूमत चलाएंगे तो अपनी ख्वाहिश से, अपने मुफादात के मुताबिक, अपने मुल्क में आइन वो नाफिज करेंगे जिसे खुद बनाएंगे। यानी हमारी पूरी जिंदगी हमारी मर्जी से चलेगी। हाँ, बस जब बच्चा पैदा होगा हमारे घर में तो उसके कान में तेरा नाम जरूर फूकेंगे। फिर जब इसकी तालीम और तरबियत का वक्त आएगा तो कभी पलट कर तेरी किताब और तेरे रसूल की सुन्नत को नहीं देखेंगे। हाँ, लेकिन मरते वक्त हम नमाज़े जनाजा बिल्कुल तेरे नबी का बताया हुआ पढ़ेंगे और आप तेरी इस किताब से साले सवाब भी करेंगे, लेकिन हम इस किताब से जो कानून और आदाब सिखाए गए थे उसको जानने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। बताइए कोई इसको अकलमंद कहेगा? बस ये है बेवकूफियां जो इंसान मुसलमान होने के बाद भी करता है और फिर भी खुद को मुसलमान कहता है। बल्कि अभी इसे एक अगला दर्जा और बता दूं, अभी तो दो पे बात की है, परस्तिश और इताअत। तीसरा दर्जा तो इससे भी बढ़कर है, और वो क्या है कि परस्तिश और गुलामी से बढ़ के अपने आप को अल्लाह के हवाले करने का नाम बंदगी है। मैं तेरी बन गई, मैं हूं ही तेरी। अरबी में कहते हैं ला मकसूद इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मुझे नहीं कुछ, आई डोंट नीड एनीथिंग। ला मतलू, मेरी कोई तलब नहीं है, मेरा मकसद कुछ और नहीं है, बस मैं तो तेरी बनना चाहती हूँ, अल्लाह तू मुझे कबूल कर ले। लिहाजा ऐसी चीजों को करने का नाम इबादत है। अब मैं और आप खुद से पूछते हैं कि हम कितने इबादत गुजार हैं। एक बच्चा जो माँ के पेट के तीन पर्दों में पल के बढ़ के बाहर आ जाता है फिर भी उसको अपने रब की पहचान ना हो तो फिर आप क्या कहेंगे? अब ये तो इबादत की बात की है ना, अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन ये जो लफ्ज नास है थोड़ा सा इसको लाऊं। पहले मैंने जान के स्किप किया कि हम बुनियादी मकसद ले लें। इंसान को नास क्यों कहते हैं? लिखिएगा, नास जो है ना ये इंसान की जमा है। हो सकता है हम आपको इस दफा पेपर्स में वाह जमा भी दें, जो बताए होंगे वही देंगे इंशाल्लाह। नास इंसान की जमा। तीन इसके मुख्तलिफ मानी है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नास का लफ्ज निसियान से है, भूल जाना। इंसान को इंसान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वादे अलस्त को भूलने वाला इंसान है। दुनिया में आता है तो रब याद होता है, फितरत के अंदर गुंदी ये चीज, कुछ सालों में दुनिया वाले ही मत मार देते हैं कि ये बात भूल जाती है, बातें करके भूल जाता है। वनसी या आदम, आदम भी भूल गए। इसी तरह इसका एक दूसरा मानी क्या है? आनसा। अगर आप सूरत तौहा को देखें तो वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आ रहे थे मदियन से मिस्र तो दूर एक आग दिखी तो वहां क्या लफ्ज आया? आनसा। आनसा कहते हैं देखा जाने वाला, सीन इंग्लिश में, यानी जिसको आप देख सकते हैं। तो इंसान को अनासा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखा जाता है। अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या होगा? बोनस क्वेश्चन है। जिन, शाबाश, जिन्होंने भी कहा बिल्कुल ठीक है। जिन, जनीन, छुपी हुई चीज, फीटस को कहते हैं। तो इंसान को इंसान इसलिए कहते हैं कि ये नजर आता है। तीसरी इसकी वजह क्या है, जो असल में वजह है? उन्स, इंसान का मादा उन्स है, उन्स, मोहब्बत। अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या होगा? वहश, वहशी जानवर। वहश कहते हैं बिल्कुल जिसके दिल में मुरव्वत भी ना हो, इसी से भी वहशी जानवर है। अब देखिए कि जानवरों के दिलों में एक दूसरे के लिए आमतौर पर मोहब्बत नहीं होती। इस्लाम इंसान से जो चीज चाहता है ना दूसरों के लिए, वो मोहब्बत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत, मक्की दौर में भी और मदनी दौर में भी, मोहब्बत करना। आपने मोहब्बत की थी तो इंसान मोहब्बत करता है। जिस इंसान से मोहब्बत, शफकत खत्म हो जाती है ना, तो वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। हमें इंसानों से नहीं, हमें तो जानवरों, जमीन, मट्टी, बेजान चीजों से भी मोहब्बत, कहा कि इनके लिए तुम नॉर्मल रहो। और ये जो लफ्ज है ना इंसानियत, वो भी इसी से ही है। तो एक इंसान जो है वो सब कुछ ये करेगा, कौन? जिसको अल्लाह ताला ने कह दिया सो बुदू रब्बा को। और यहाँ नोट कर लीजिए, ये पहला हुक्म है कुरान में तरतीब के एतबार से, द फर्स्ट ऑर्डर, जिसको आप कह सकते हैं ना क्रॉनिकल। तरतीब के एतबार से देखें तो पहली दफा सीगा अमर आया है, फेले अमर कह लीजिए, इंटरोगेटिव। तो क्या ये है पूरे दीन का खुलासा? अगर कोई आपसे कभी कहे ना पूरे कुरान को एक नटशेल में बंद कर दो, दो जुमले बोल दो पूरा कुरान क्या कहता है, तो आपको यही जवाब देना होगा, इस्लाम मुझसे ये कहता है या कुरान ये कहता है कि रब को उसकी हैसियत में पहचान लो और अपने आप को मान लो कि तुम क्या हो।